وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں.
السلام علیکم. بڑا اچھے طریقے سے ہم نے ڈسکس کیا اس چیز کو. اس میں دو تین پوائنٹس تھے. ایک تو فساد کے حوالے سے، یہ بڑا اہم قرآن ایک ٹرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف جگہوں پہ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں، اور ہمیں اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں جو منافقین سے کی جا رہی ہیں نا، تو جو منافقین ہیں وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے فساد کے ساتھ. مطلب اور لوگ بھی مفسد ہو سکتے ہیں، لیکن منافقین جو ہیں وہ بہت زیادہ فساد کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی ان کا مرض بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ ایک طرح کی سیلف ڈیسیپشن ہے ان کی، کہ وہ اپنے فساد کو، اور فساد کی ٹرم کی بات تھوڑی سی ایڈیشن کر لیتے ہیں. فساد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکلی چیزوں کو ہارم کر رہے ہیں، بلکہ آپ مورل کرپشن جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے نا، کہ آپ جھوٹ اور پروپاگنڈا اور اس قسم کی چیزیں جو جس طرح مدینہ منورہ میں یہ لوگ ہمیں قرآن مجید میں بھی اور واقعہ سے ملتا ہے اور سیرت کی کتاب میں ملتا ہے، جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر انہوں نے تہمتیں لگائیں، اور باقی بھی ان کے ہر وقت کچھ نہ کچھ ان کے اس طرح کے فسادی پروگرام چلتے رہتے تھے. تو یہ جو فساد ہے یہ صرف فیتھ والا فساد نہیں ہے کہ ان کے ایمان میں فساد تھا، بلکہ وہ جو مورل کرپشن سوسائٹی میں کرتے تھے، اس کے بعد جو ربا ہے، جو سود ہے، وہ بھی اسی فساد کی ایک فارم ہے. اور جو وہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو امت کی، قوم کی، یا لوگ انسانوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک سیلف ڈیسیپشن کے اندر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبردار کیا ہے آگے. اگلا ساتھ ہی جو آیت ہے وہ اعلیٰ، مطلب اس میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ مفسد ہیں، مگر یہ اس کا شعور نہیں رکھتے. تو یہ ہمیں فوراً خبردار کیا جا رہا ہے. اور آگے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، تو آگے سے وہ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، کہ یہ تو اللہ اور رسول کی ہر بات مان لیتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے ہیں یہ اس کو مان لیتے ہیں، یہ اپنی عقل کے اوپر، اپنے فائدے کے اوپر اس کو پرکھتے نہیں ہیں. اور آمنا و صدقنا کہتے ہیں، سمینا و اطعنا کہتے ہیں، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں یہ جو صحابہ کرام کو ان لوگوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، جو بعد میں بھی جو لوگ آئیں گے، جو منافق، جن کے اندر منافقانہ طرز عمل ہوگا، وہی لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس رسول کی بات کو سمینا و اطعنا نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے اوپر آگے سے بحث کریں گے، حجت کریں گے، اور اپنے آپ کو شاید بہت زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں بے وقوف ہیں، لیکن اس کا علم نہیں رکھا. اچھا، تو ابھی میرا خیال ہے یہاں پہ بھی ایک دو اگر کوئی اور کوسچن بھی ہیں تو ہم پھر فردر آگے جاتے ہیں.
اور بات کرنا چاہتا ہے اس میں جو سینٹینس کی جو ڈیپتھ ہے وہ تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے زبردست بات کی کہ اعلیٰ خبردار کے لیے ہے، بیکم الرٹ یہ مطلب ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ انہم ہم، لیکن دو دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس میں سختی ہے کافی، یعنی کہ ایک دفعہ سے بھی کام چل جانا تھا. یہ پہلا انہم مطلب ہے کہ وہ تخصیص کرتا ہے، یعنی کہ وہ باقی ساروں سے ان کو کاٹ کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ جو ہے نا انہوں، اس کو تو آپ سائڈ پہ رکھ لینا سب کو، اور یہی لوگ ہیں اصل میں، یعنی کہ کافی شدت آئی ہے. اور پھر المفسد ان کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو یعنی کہ ان کو مزید تخصیص ہوئی ہے. تو یہ یعنی کہ ڈبل ٹرپل، یعنی کہ اگر ہم یہ آیت کہیں کوئی اگر انگلش میں بات کرے گا نا، اور یہی میں دوبارہ بات کروں گا کہ دو چیزیں ہمارے کنٹیکسٹ میں ابھی تک جا رہی ہیں، ایک لارحب کی بات ہو رہی ہے اور ایک ہدایت کی بات ہو رہی ہے جو میرے ذہن میں ابھی چل رہی ہے. کہ ایک ہم جب آیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تو لارحب آپ کو ثابت نظر آئے گا، اور ایک آپ کو ہدایت کی حقیقت سمجھ آنا نکلتی رہے گی. تو دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو چنا اس لیے ہے اپنے کتاب کو بھیجنے کے لیے کہ اس میں اتنی ضخامت ہے کہ آپ کو ایکسکلیمیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انگلش میں آپ اس طرح کا سینٹینس نہیں بول سکتے جس طریقے سے یہ سینٹینس یہاں پہ لکھا گیا ہے، کہ کس طریقے سے اللہ نے تخصیص کر کے اس میں پوری طاقت لگائی ہے एक तो उनको चॉप आउट कर दिया दूसरे मुआशरे से, कि असल में इंसानों के अंदर ये लोग शामिल ही नहीं हैं, ये मुफसिदीन जो हैं ये असल में शैतान हैं अपनी ज़ात के अंदर, लेकिन ये है कि वो उस जिस तरह डिसेप्शन आप कह रहे हैं उसमें चले गए हैं, कि वो अपने आप को तो बड़ा अकलमंद समझते हैं, हालांकि वो शऊर खत्म हो चुका है उन लोगों का।
जी, आपने जो ग्रामेटिकल पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कुरान का इजाज़ है कि वो अपनी बात को जो एम्फसाइज है ना, जो एम्फसिस है वो बड़ा खूबसूरत तरीके से उसमें होता है, कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि इन्नहुमुल मुफ्सिदून, इस तरह भी ठीक था, वो बात एक ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो अल्फाज सुने तो उसके पीछे जारी बताया वो खुदा है, उनकी हिकमत है, तो उसमें मतलब जिस तरह एम्फसाइज करते हैं कि हाँ जी यही यही लोग हैं, मतलब उसको एम्फसाइज करते हैं ना कि हाँ जी यही यही लोग मुफ्सिदीन है, ये मतलब यही मुफ्सिदीन है, तो उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि एक वार्निंग वाली लैंग्वेज है अहले ईमान के लिए, क्योंकि अहले ईमान इनके ट्रैप में आ सकते हैं, और क्योंकि मुनाफिकीन के जो डायरेक्ट ऑडियंस होती है मुनाफिकीन की, वो तो अहले ईमान होते हैं, तो उन्होंने उनके अंदर फसाद पैदा करना होता है, उनको बेसिकली गुमराह करने के अंदर उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि काफरों को तो उन्होंने करना नहीं, काफरों के तो वो दोस्त हैं, तो उन्होंने तो उनको ही कहना कि भाई हम तो आपकी तरह ही है, लेकिन देखें ये बातें जो कर रहे हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई मेक सेंस नहीं कर रही बातें ना, इससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हमारी जिस तरह कुरान मजीद में जब वो उनको किताल के मुतल जिहाद के मुतल हुक्म दिया गया, तो तब भी उन्होंने कहा कि हमारे तो फसलें पड़ी हुई, हमारी फसलों का क्या बनेगा, तो वो इन चीज़ों को एज अ लॉजिकल आर्गूमेंट पेश करते थे कि देखें ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आपके हकीकी खैरख्वाह नहीं है, या हमें कुछ अपनी भी खैरख्वाही इसमें डालनी पड़ेगी, और ये वो चीज़ है जो बड़ी मुश्किल है आज के दौर में भी, जब क्योंकि अल्लाह के रसूल तो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, और उनकी जो सुन्नत है और कुरान है वो ही हमारे सामने मौजूद है, तो हमारे इर्द गिर्द भी लोग मुनाफिकीन डेफिनेटली होंगे, और हमारे अपने अंदर भी निफाक की कुछ ना कुछ सूरतें होंगी, तो उनसे बचने की एक ही शक्ल है, वो है कि आप कुरान मजीद के साथ ताल्लुक कायम करें, और जो नेक लोग हैं साले लोग हैं उनके साथ ताल्लुक कायम करें, ताकि वो आपको इन चीज़ों पर खबरदार रखें, और कुरान जो है आपको एक कसौटी दे कि आप उससे परख सकें कि हाँ जी ये चीज़ वाकई फसाद वाली है या नहीं है, क्योंकि जैसे हमने रिबा का मैंने तस्करा हल्का सा किया कि वो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है सोसाइटी में, और वो सब चीज़ हम उसको इसमें जी रहे हैं इस कन्फ्यूजन में, इतने ज़्यादा ओपिनियंस हैं, इंटरप्रटेशन हैं, और आपको किसी ना किसी बात को क्या कहते हैं हीले मिल जाते हैं, बहाने मिल जाते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पर चल रहे हैं, तो इसमें सब ऐसे एक एडिशनल चीज़ जो जो मेरे लिए इस आयत में जो 13वीं आयत नेक्स्ट आयत है, कि जो उनको जब ये कहा जा रहा है कि आपने उनकी तरह ईमान लाए से बाकी लोग ईमान लाए हैं, तो वो अपने आप को उनसे अलहदा समझते हैं, उनके अंदर एक तरह का एक कुछ सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ये तो सुफहा है, ये तो मतलब बेवकूफ़ लोग हैं, नाउज़ुबिल्लाह, तो हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए हैं कि मतलब आंखें बंद करके, हम ऐसे ईमान लाने वाले नहीं है, हम तो बड़े वो अकलमंद लोग हैं, तो लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ हैं कि जो अल्लाह की बात के आगे जो है उसको अकल की पैरवी पे मजबूर कर रहे हैं, और ये ईमान का जो तनाजुर है ये बहुत डिफरेंट है, मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसके अंदर ये लोगों के अंदर ये चीज़ डेवलप हो चुकी है कि वो हर चीज़ को अकल की कसौटी के साथ देखते हैं, और जो चीज़ अकल के मयार पे पूरा ना उतरे उसके ऊपर वो ईमान लाने के लिए तैयार नहीं होते, ये चीज़ बहुत फिक्रमंदी की अलामत है।
ऐसा ही है। इस जो सुफहा का ताल्लुक है ना, ये भी शऊर से बनता है, जो पिछले आदमी है ना, कि जो शऊर और लाशऊर तो नहीं कहेंगे, या जो कम अकली है उसमें, देखिए इस आदमी डायरेक्टली इशारा हो रहा है कि उनका जो शऊर है, जिस तरह भी आपने इशारा किया है कि वो दुनियावी लवाजमात के हिसाब किताब तक जो अकली वजूद है ना उनका, कि वो अपनी अकली वजूद पे तराजू तोल के उसको मीज़ान बना के एक फैसला दे रहे हैं कि इसमें फ़ायदा है, प्लस माइनस करते हैं ना, कैलकुलेटर रखे। तो अल्लाह कहते हैं कि ये क्योंकि उनको ईमान बिल गैब नहीं है, जिस तरह ऊपर जिस तरह शुरू हुआ ना, क्योंकि ईमान बिल गैब का उनका प्रॉब्लम है, इसलिए वो जो फैसला कर रहे हैं वो असल में ये बेवकूफ़ हैं कि ये इसी दुनिया की ख्वाहिशात में मगन जो है ना अपने फैसले कर रहे हैं और अपने आखरत को भूल गए हैं।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या
वालेकुम
मैं भी
सलाम।
थोड़ा बहुत ऐड कर सकता हूँ?
हाँ जी
एक्चुअली बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है, तो मैंने सोचा मैं भी जो सोच रहा हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक जो कुरान मजीद में बातें हुई हैं या होती हैं वो भी लॉजिकल तो होती हैं, ऐसा नहीं है लॉजिकल नहीं है,
और उसकी बहुत बड़ी लॉजिक के साथ अल्लाह मियाँ ने कुरान मजीद को और हमारे लिए मिसालें बताई हैं जिस बेस पे कि ये हमारे से पहले जो कौमें गुजरी हैं उन्होंने ये किया, उन पे ये अदाब आए। तो ये एक तरह से मतलब हमारे लिए सबक भी है और हम इससे लॉजिक भी निकाल सकते हैं कि वही जिस तरह आपने बात की कि आखिरत, लोग आखिरत को नहीं सोचते ना, एक ये मकसद हो गया जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि यार दुनिया को सोचो, जिसकी वजह से वो दुनिया की लॉजिक सोच रहे होते हैं, आखिरत की नहीं सोच रहे होते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिरत की लॉजिक के साथ सोचना चाहिए कि यार अब हाँ, जिस तरह आप कोई भी मतलब आप लॉजिक अगर डालते हो किसी भी चीज में और अल्लाह मियाँ के मतलब आप जो भी कुरान मजीद में लिखा हुआ है उसको नहीं फॉलो करते हो या सोचते हो कि यार इसमें ये हो सकता है, तो इट मीन्स आप सिर्फ ये देख रहे हो कि यार दुनिया में मुझे कितना फायदा होगा, ठीक है। और बाज़ों का दुनिया में भी वो चीजें अनप्रिडिक्टेड होती हैं, यानी कि आप सर्टेन हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो मगर उसके बाद जो अनसर्टेनिटीज का लेवल है वो लाजमी रहता है, ठीक है। और जिसको एज ए मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि यार वो अल्लाह मियाँ के हाथ में, अब क्या होता है क्या नहीं होता है ठीक है वो अब अल्लाह मियाँ के हाथ है ना। तो मेरे ख्याल से वो जो वो वाला लिमिट है ना अनसर्टेनिटी का जो हम छोड़ते हैं अल्लाह पर, ठीक है, वो इंसान कोशिश करता है कि अपने हाथ में रखे, ठीक है,
बिल्कुल
और इसी कोशिश में वो लगा हुआ है जिसकी वजह से वो दुनियावी लॉजिक सोच रहा है, ठीक है, आखिरत की लॉजिक के साथ अगर उसको रिलेट कर लेगा तो वो बेटर हो जाएगा। तो आई थिंक मैं इस चीज को मतलब इस तरह समझता हूँ कि कुरान मजीद में बहुत अच्छी लॉजिक है अगर हम उसको पूरा तरीके से समझें और उसके पीछे जो उसका बैक ऑफ पर्पस है ना वो उसको सोचें और उसका पूरा जायजा लें कि यार ये एक्चुअली हमें कुछ अहकाम दिए गए हैं और उससे पहले जो कौमें गुजरी उन्होंने जो उस अहकाम को नहीं माना, फिर उनकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ठीक है, जिस बेस पे बताया गया है कि जो तुम लॉजिक सोच रहे हो दुनिया के लिए वो एक्चुअली लॉजिक तुम्हारी गलत है या तुम उसमें मिस इंटरप्रेट कर रहे हो चीज को। तो मैं इसको इस तरह करके देखता हूँ।
उमर भाई, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूंगा। बड़ी ज़बरदस्त बात की है डॉक्टर साहब ने, ये डॉक्टर असलाम साहब हैं हमारे। इसमें एक चीज़ बस मैं इजाफा करूंगा कि हमारा अमूमन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग एक आयत को लेते हैं और उसको कहीं रख के और आउट ऑफ कंटेक्स्ट डिस्कशन शुरू कर देते हैं। और हमारे साथ शायद मुसलमानों के साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन गैर मुसलमान या मुल्हिदीन के साथ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके एक डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन आयात को देखें, जिस तरीके से ऊपर से सिलसिला चल चल रहा है ना, अगर मैं इस आयत को कहीं वैसे रख दूंगा ना, तो जो गैर मुस्लिम है वो उस पर हंसेगा कि यार ये क्या क्या बात कि बेवकूफ़ है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम बेवकूफ़, ये क्या बात चल रही है। हालांकि जब आप ऊपर से इसको पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्टेक्स्ट इसका क्लियर होता है कि किस तरीके से अल्लाह ताला उसको एक खास तरीके से लेके आ रहे हैं। ईमानियात पहले डिफाइन हुई हैं, हिदायत डिफाइन हुई है, फिर सारी बात जब शऊर की बात हो गई है, फसाद की बात हो गई है, और जब सारी बात यहाँ पे आ गई है, तो तब जाके अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि असल में सुफहा कौन लोग हैं, कि असल में बेवकूफ़ कौन लोग हैं, कि जो सारी ऊपर से चीज़ें बयान हुई हैं उसमें जो है ना, अब आप लोग खुद इंसानों फैसला करो कि असल बेवकूफ कौन है यहाँ पे।
जी, असलाम मैंने अच्छी पॉइंट्स रेज किए उसमें। मैं सिर्फ मैं एक चीज सिर्फ थोड़ा सा तवज्जो देना चाहूंगा, जो एक डायमेंशन है जो उनकी बात के अंदर एक चीज इम्प्लिसिट है ना, वो ये है कि ही इज टॉकिंग अबाउट आफ्टर फेथ। क्योंकि जो जब आप ईमान लेकर आते हैं ना, मतलब आखरत का तसव्वुर जब आपके माइंड में क्लियर हो गया है तो फिर डेफिनेटली फिर आपकी जो लॉजिक है आपकी लॉजिक ही डिफरेंट है, मतलब आखरत के साथ तो फिर आपकी इक्वेशन ही डिफरेंट हो जाती है। और यही मेरा ख्याल है बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जो मुनाफिकीन के लिए उनको आइडेंटिफाई करने में बड़ा इजीली हेल्पफुल हो सकता है। और अपने अंदर भी अगर नफाक पैदा हो रहा हो तो इंसान उसको रिमूव करे कि आप आखरत को याद करें कि अच्छा ये जो भी इक्वेशन है जो भी
जबरदस्त,
लॉजिक मैं सोच रहा हूँ इसमें
बिल्कुल
आखरत है या नहीं है इस लॉजिक में। क्योंकि जब
बिल्कुल
अगर आखरत होगी तो फिर वो डिफरेंट इक्वेशन बनेगी, आप डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, आपका सोचने का और मेजर करने का मतलब आपके पैरामीटर डिफरेंट हो जाएंगे। और आप सिर्फ दुनिया का अगर सोचेंगे तो उसमें डेफिनेटली फिर आप आर्गुमेंट में पढ़ सकते हैं कि अच्छा इसका मुझे फायदा है या नहीं है।
बिल्कुल
और यही चीज है जो ईमान की निशानी है कि जो मोमिन है, जो ईमान वाला है, जिसका दिल निफाक से महफूज है, वो हमेशा आखरत को अपनी इक्वेशन के अंदर शामिल करेगा और उसी लिहाज से सोचेगा। और जो मुनाफे का वगैरह आखिर किसने देखी है, हाँ भाई अभी आखिर को छोड़े, अभी मुझे दुनिया की आप बता दें, ठीक है हाँ जी आखिर तो मिल ही जाएगा ठीक है, लेकिन अभी अभी क्या मिलेगा, अभी उसकी बात कर लें।
हाँ
तो ये चीज है जो एक मेरा ख्याल बहुत क्लियर इंडिकेशन होती है, और अल्लाह
इसलिए
ताला ने भी कुरान मजीद में इसको और इसलिए जो कुरान की जो लॉजिक है ना, जो कुरान की लॉजिक है वो ईमान वालों को बड़े और तरीके से समझ आती है, और जो ईमान वाले नहीं होते ना उनको नहीं समझ आती, क्योंकि वो कुरान हमेशा आखरत को क्वेश्चन में रखता है। वो कहता है आखरत के अलावा तो आपके कोई भी अमल है मतलब, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सब कुछ जस्ट हो जाए, आपको आपके हर चीज का अजर मिल जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो अगर आप सिर्फ एक दुनिया के परस्पेक्टिव सोचेंगे तो शायद आपको लगे कि हम खसारे में हैं। मुझे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक सीरत की किताबों में एक बड़ा मशहूर कौल है, वो जब जंग हुई जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद उन मुसलमानों को थोड़ी शिकस्त अपेरेंटली हुई, तो अबू सुफियान ने उनसे कहा था उमर से कि ए उमर, तो बदर में तुम जीत गए और ओहद में हम जीत गए, साहब बराबर हो गया। तो उमर ने फरमाया था कि कौन सा साहब बराबर, तुम्हारे जो मरे हो जहन्नुम में गए, हमारे जो मरे हो जन्नत में गए। वो अजीब मतलब ये जो लॉजिक है ना डिफरेंट है, ये डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती है, क्योंकि वो हम लोग इसको जैसे दुनिया के लिहाज से देखें तो वो और तरीके से चीज बनती है।
और कोई साथी बात करेगा इसमें, देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से अल्लाह ताला जलालत जो है दुलाला उसको डिफाइन कर रहे हैं इस आयत के अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا। اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر और उस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है और उस किताब पर जो इससे पहले वो नाजिल कर चुका है जिसने अल्लाह और उसके मलाइका और उस किताबों और उसके रसूलों और रोज़ आखरत से कुफ्र किया और गुमराही में भटक गया बहुत दूर निकल गया, यानी कि वही गुमराही में भटक गया और बहुत बहुत दूर निकल गया। तो ये दोबारा वही बात हो रही है जो हम उधर कर रहे थे, वो डिफरेंट आयात में, यहाँ पे एक आयत के अंदर कलेक्टिवली बयान हो गई है कि जो दलालत है वो असल में क्या चीज़ है, कि अगर कोई अगर ईमान नहीं लेके आता, पहले तो वो ईमान वालों को कहा जा रहा है कि या ईमान वालों ईमान ले आओ, मतलब है कि सही तरीके से ईमान ले आओ जो उसका हक है, कि अल्लाह पर उसके रसूल पर और जो पहले किताबें नाजिल हुई हैं, यानी कि जो ईमान बिलगायब है वो भी बीच में इंक्लूड हो गया, मलाइका भी आ गए और किताबें भी आ गई, आखरत भी आ गई और सारा कुछ मिला के कहा गया अगर तुम ये ऐसा नहीं होगा तो तुम लाजमी बात है भटक जाओगे, हिदायत से तुम लोग हट जाओगे असल में। तो ये एक ही आयत में सारी चीजें इकट्ठी अल्लाह ताला ने कर दी है सूरत निसा में। शैतान के बारे में
अभी ताहिर भाई के कोई क्वेश्चन है, मैं तो ताहिर भाई के सवाल का इंतजार कर रहा हूँ। ताहिर भाई लगता है आज बिजी हैं।
हाँ जी, ताहिर भाई नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं।
अच्छा मेरा अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सी तदब्बुर कर लेते हैं। ये जो बड़े फ्रेजेस है ना बड़े मजे के हैं, वइज़ा क़ीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है, जो अभी ऊपर जो दौड़ अल्लाह ताला ने उनकी मुनाफिकीन से डिस्कशन की है ना, तो जब ये शुरू हो रहे हैं तो वइज़ा क़ीला लहुम आमीन सा ये कहा गया, इसी ऊपर कहा गया कि वाइदा की लैला हूँ, तो अब इसमें ये कौन उनसे कह रहा है, कि कौन उनसे कह रहा है कि आप फसाद ना करें।
उसमें लाजमी बात है उसमें रसूल है, उसमें ईमान वाले हैं और खुदा की जात खुद है जो उनको पुकार रही है। ये मेरे नहीं ख्याल के ये सिर्फ एक टाइम के लिए बाउंडेड बात है, बल्कि ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि हर दौर में जो ऐसे लोग होंगे कि जो उनको इस तरीके इस तरफ बुलाएंगे तो वो उन लोगों का जवाब ऐसा होगा, या जब जब उनको बुलाया गया तो ये हुआ। आप क्या कहते हैं?
जी, यही मेरा भी मतलब इसे इसे कि जिस तरह कुरान मजीद उनसे कहता है, कलाम करते हैं, कुरान में सुनते हैं, ले ईमान पढ़ रहे होते हैं, या कोई डिस्कशन हो रही होती है तो तब यही बातें हो रही होती है ना। जैसे कुरान मजीद है वो भी जब मुनाफिकीन भी कुरान पढ़ते थे ना, हमें लगता है मुनाफिकीन मतलब बहुत ही कुछ अच्छा काम करते नहीं थे, अपेरेंटली वो अच्छे काम करते थे, नमाजें भी बहुत अच्छी पढ़ते थे, अच्छे से पढ़ाता कि पूरी पढ़ते थे, सफों में आते थे, तो वहां पर ये बातें डिस्कशन होती थी सहाबा कराम के साथ, उनके साथ डिस्कशन होती थी, और यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वाज़ फरमाते थे, तो उसमें बात होती थी, तो वो लोग उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते थे, चाहे वो उसको डायरेक्टली नहीं कहते थे, लेकिन अल्लाह ताला उसको इस तरीके से बयान कर रहे हैं कि हम वो वही कह रहे हैं कि हम उस तरह ही मान लें जैसे बेवकूफ लोग मान लेकर आए, या हम तो इसलाह करने वाले हैं। और इसमें एक पहलू और भी है जो मेरा ख्याल है, कुछ तफसीर पढ़ा था आई थिंक इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने लिखा इसके ऊपर, और वो चीज़ भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि ये एक तरह का इंटरनल डायलॉग भी है कि हर इंसान के अंदर एक उनका उसका अपना ज़मीर होता है, उसका ज़मीर भी उसे कई दफ़ा कहता है कि ऐसा ईमान ले जैसे बाकी लोग ईमान ले आए, तो उसका ज़मीर की जो आवाज़ है जो अल्लाह ने उसके दिल के अंदर एक हक का शऊर रखा है, वो भी उसको कई दफ़ा अंदर से झुंझोड़ता है मुनाफिक को भी ना, तुम ऐसे ही मान लाए, तो आगे से वो अपने ज़मीर को जवाब दे रहा होता है कि मैं ऐसे ही मान ले आऊँ जैसे ये लोग उस लोग ईमान लेकर आए। तो इसमें ये सारी जो जो ये अल्लाह पाक ने जो कुरान मजीद की जो फ्रेजिंग है ना, उसमें वो सारे मीनिंग्स अपनी एंटायरिटी में होते हैं, कि वो उसमें इस डिफरेंट लेयर्स हैं जिस तरीके से वो कुरान मजीद में जो अल्फाज को जो चुनाव रखा है, इसलिए ऐसे जाता है कि वो आप उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अच्छा अहले ईमान को कहा जा रहा है कुरान से जब वो तामुल कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, कुरान को ऐसे कह रहा है, और यहाँ पर उनको उनका कई दफ़ा उनका अपना ज़मीर भी जो है उनको इस तरफ झिझोड़ता है कि ऐसे ईमान ले आओ, तो फिर कहते हैं नहीं नहीं हम तो उस तरह ईमान नहीं ला सकते, हम तो बड़े सुपीरियर लोग हैं।
ये बात सही है कि जितनी भी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर वसायल रखे हैं ना हिदायत तक जाने के लिए, वो सारे यहाँ पे मतलब हैं, बस ये है कि इसमें माजी का सीगा लगा है ना, माजी और उसका हाल की कनेक्टिविटी जोड़ी गई है। जो शैतान के बारे में मैं बस कहना चाहता था वो फिर दोबारा बात आ गई, शैतान मैंने लिखा भी हुआ था, ये शतन है असल में, यानी कि अमूमन ये है कि टू बी सेट ऑन फायर, यहाँ से इसका या तो ऐसे है ना कि ये नाम जो है ना ये है कि ये खुद जो शयातीन है, फर्ज किया जो जिन शयातीन है वो आग से बने हैं, एक वहां से भी बात है, लेकिन ये है कि ये वो हस्तियां हैं जो आपको आग की तरफ गाइडेंस देती हैं असल में, और यहाँ से इस नाम के अंदर जो है ना जहन्नम का तसव्वुर मौजूद है, और शयातीन वो लोग हैं जो आपको असल में आग की तरफ रहनुमाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आयत निकाली थी मेरे ख्याल में, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ, بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں, كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ, حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کے دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. سعیر بھی جو ہے نا, سعیر کا مطلب جلنے سے ہے اصل میں, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ شیطان کا تعلق نا جو جلنے سے اس طریقے سے جوڑا ہے اس آیت میں. انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر علم کے بحثیں کرتے ہیں اور اصل میں وہ اتباع کرتے ہیں شیطان کی, مرید, ایک مرید ہوتا ہے اور ایک مرید ہوتا ہے نا, تو یہ بات بھی وہی اسی آیت کو ریفلیکٹ کر رہی ہے اصل میں کہ وہاں پہ بھی دیکھیں وہ ناس کی بات ہوئی ہے نا ہمارے ساتھ, وہاں پہ دیکھا آپ نے, اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی وہی چیز. تو یہ میں اصل میں دکھانا چاہتا تھا کہ جو کتاب کے اندر قرآن کی جو خوبصورتی ہے, اب یہ آیات ایک وقت میں ساری نہیں نازل ہوئی نا, لیکن مختلف اوقات میں آئی ہیں, لیکن کس خوبصورتی سی وہ ایک دوسرے کو ریفلیکٹ کرتی ہیں آیات اسی انداز میں, یہ میں دکھانا چاہتا تھا. پھر یہیں پہ دلالت بھی آ گئی ہے, ہدایت بھی آ گئی ہے, شیطان بھی بیچ میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پوری چیز یہاں پہ اس طریقے سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے شیطان کا جو معاملہ ہے. پھر یہ والی آیات ہیں منافقین کے بارے میں کہ اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں, اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقت ہے, یہ جھوٹے ہیں. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے, مجھے اصل میں بڑی اچھی لگی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آیت تو اس طرح بھی ہو سکتی تھی نا کہ سیدھے وہ کہتا ہے کہ اذا جاء المنافقون قالوا نشهد الا انك لرسول اللہ, یعنی وہ سیدھے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم اصل میں رسول اپنا سیدھے راستے پہ ہو, ठीक है कि तुम रसूल हो, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले अपनी गवाही दे दी है, यानी कि अगर वो ये चीज बीच में ना होती ना, तो इसका मतलब दूसरा भी हो जाता। उसका तर्जमा ये होता कि ये बीच में गवाही गायब हो जाती, और ये होता कि बल्कि तुम तो रसूल हो असल में, ठीक है, कि वो उसमें नफी का पहलू वो बीच में आ जाता। तो ये मुझे आयत बड़ी अच्छी लगी थी असल में, कि अल्लाह के शहादत तो उस चीज की देता है कि जो मुनाफिकीन हैं वो असल में झूठे हैं, और उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, उनके पास लॉजिक नहीं होती। वो पिछली आयत में हमने देखा है ना कि वो बगैर इल्म के असल में झगड़ा करते हैं। यहाँ पे अल्लाह कहता है कि क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, तो वो लोग असल में अपनी कस्में उठा के ना आपके साथ बहस करते हैं असल में। इस तरह ये अल्लाह के रास्ते से खुद रोकते हैं और दुनिया को भी रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। तो इल्म की जब कमी होती है तो इंसान चीजों को इमोशनली डायलॉग में ला के उसमें जीतना चाहता है। तो यहाँ पे उस तरीके से अल्लाह ताला वो बात फरमा रहे हैं। और वही एक आयत जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया था दलाला का, कि एक अल्लाह ताला कहता है कि इन्होंने गुमराह का मतलब, अमूमन गुमराह तर्जमा होता है, और उर्दू में गुमराह अमूमन नेगेटिव सेंस में इस तरीके से बोला जाता है, कि बाज़ लोग उसको गाली, हम लोग ज़्यादा तसव्वुर करते हैं ना। हालांकि दलाला जो कुरान में है वो ये है कि गलत रास्ते पे किसी चीज़ का होना, यानी हिदायत के उलट है ना। तो यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लम से फरमाया जा रहा है कि पहले आप नावाकिफ थे, आप उस रास्ते पे थे, लेकिन अल्लाह ने आपको फिर हिदायत बख्शी और आप सीधे रास्ते पे आ गए। तो असल में ये मोमिनीन को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि किस तरीके से अल्लाह ताला इंसान को, जब इंसान पैदा होता है, इंसान बलूगत की तरफ जाता है, तो इंसान को ऐसा अल्लाह ताला अपनी हिदायत की तरफ खींचता है, अपनी किताब के जरिए, अपने रसूल के जरिए, मोमिन लोगों के जरिए। तो उसमें जो है ना, इस चीज़ को मैं बताना चाहता था कि दलाला है या जो गुमराही है वो असल में हिदायत के उलट एक लफ्ज़ है, और वो पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस में दोनों सेंस में कुरान में इस्तेमाल हुआ है असल में।
असल में चले, ये बात तो अब जाते जाते खोल दी। ये बड़ा गहरा टॉपिक है, लेकिन मुख्तसरन मैं ये अर्ज करूंगा कि जो इल्म कुरान जब इल्म इस्तेमाल करता है लफ्ज, वो बड़ा एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में होता है अक्सर औकात। जहाँ पे जेनेरिक वे में होता है वो समझ आ जाती है, कि जहाँ पे जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप जहाँ पे जो इल्म की बात कर रहे हैं, वो इल्म जो है वो वही का इल्म है, वो रेवोल्यूशन का नॉलेज है। क्योंकि इंसान के पास वही के अलावा कोई और जरिया नहीं है खुदा की ज़ात को पहचानने का, खुदा के अहकामात को जानने का। तो इसलिए जो इल्म है वो इल्म बिल वही जो है, ये उस एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इल्म है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है या उस
बिल्कुल
लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक भी जो सूरह दुहा की आपने बात की है, उसमें भी जो हदायत का तذکرہ है, वजदा का दौलन सहदा, उसमें भी यही पॉइंट है कि आप भी जो थे वही के इल्म से नवाकिफ थे, तो अल्लाह ताला ने आपको वही का इल्म अता फरमाया, हिदायत दी।
बिल्कुल
तो और ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है इस सेंस में कि जो ईमान है और जो हिदायत है वो सिर्फ और सिर्फ हमें उसी तरीके से मिल सकती है जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। क्योंकि आप जो हैं वो डायरेक्ट हिदायत के रेसिपिएंट है ना आप, और आप उस हदायत के पहुंचाने वाले हैं आगे। तो जो अल्लाह ताला ने उनको हदायत दी है वही हमारे लिए हदायत हो सकती है, और वो कुरान और सुन्नत उस फॉर्म में है। और वो इल्म है जो जिसको कुरान ऐसे मुबाहिस में जब इल्म लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो उस उनके लिए कि जो लोग वही का इल्म है, वही का नॉलेज रखते हैं। क्योंकि जो हमारे ह्यूमन फैकल्टीज हैं, जो इंसानी इस्तेदाद के अलूम हैं, वो सारे के सारे माहियत या स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, वो खुदा के जो अहकामात हैं उन तक नहीं पहुंच सकते ना। मतलब आप फलसफे में अगर खुदा के मुबाहिस को पढ़ेंगे, वो खुदा के वजूद के इन इन इस चीजों तक रिलेटेड रहेंगे ना, कि खुदा एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आप उस नतीजे पहुंच भी कि हाँ जी खुदा एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो खुदा हमसे चाहता क्या है, ये आपको कोई फलसफी या कोई आलिम नहीं बता सकता ना। मेरे पास में तो मंतकी तौर पे आपको खुदा के वजूद के कायल हो भी जाए, लेकिन व्हाट डज दैट गॉड नीड फ्रॉम अस, द ओनली सोर्स फॉर दैट इज रेवलेशन, कि खुदा खुद ही आगे बढ़ के बता दे कि हाँ ये मैं आपसे चाहता हूँ। और यही पैगंबरों का और रसूलों का सिलसिला जो अल्लाह ने जारी फरमाया, और उसके बगैर जो है इंसान गुमराह है, इंसान कभी भी खालिक की मंशा को नहीं पा सकता जब तक वो वही के इल्म से सरफराज ना हो जाए।
ये जो असल इलम है, डिवाइन गाइडेंस जो है ना, वही असल में हिदायत की बात, पर्सपेक्टिव से बात होगी तो हिदायत का सोर्स वही है। मजीद अगर किसी साथी का भी सवाल हो, टाइम भी हमारा बस पूरे होने लगा है, मेरे ख्याल में हमारी डिस्कशन आज कंक्लूड हो गई है, काफ़ी अच्छी तरीके से इस पर बात हुई है। इंशाल्लाह अगली अगले हफ्ते अगली आयात के साथ आएंगे, और जो इसमें अभी तशनगी रहती है इस डिस्कशन में, क्योंकि आयात एक दूसरे को कंप्लीट करती चली जाती हैं, जिस तरीके से हम आगे पढ़ते चले जाएंगे तो जो चीज़ें अभी बीच में तशनगी रहती है वो आगे आयात में मज़ीद उसको कंप्लीशन मिलती चली जाएगी इंशाल्लाह। तो आप सारे साथियों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ दे, और रोज़ों के बबरकत महीने में अल्लाह ताला आप लोगों को रिस्क में फरमानी और औलाद में बरकत अता फरमाए, और यह कि हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।